हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प्रापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु इसी के साथ साथ अत्यंत उदात भी। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है, चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ शब्द आ रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्य। पापेभ्य का अर्थ है जितने भी पापी हैं उनमें। सबसे पापी अगर आप हो, सर्वेभ्य पाप कृतमः, और उन सभी पापियों में कृतमः मतलब सबसे अधिक से उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है से सबसे अधिक पापी क्यों ना हो, हर प्रकार के अपने पाप भी क्यों ना किए हो, यानी कि ये एक सबसे अधिक पापी व्यक्ति को इंगित करता है। तो उसके बारे में बोल रहे हैं ज्ञान प्लवे नैव, कि अगर वो दिव्य ज्ञान की रूपी नाव के ऊपर सवार हो जाता है ऐसा व्यक्ति, तो व्रजिनम संतरिष्यसि। व्रजिनम का अर्थ होता है ये दुखों का सागर। यहाँ पे भी प्रभुपद बोल रहे हैं दुखों का सागर। व्रजिनम का अर्थ है दुखों का सागर, और वो बोल रहे हैं कि संतरिष्यसि, सम मतलब सम्यक, तरिष्यसि मतलब पार कर जाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति पापी से पापी भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर भगवान के दिव्य ज्ञान से वो युक्त हो जाता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है तो फिर वो निश्चित रूप से इस दुखों के सागर से पार हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, भगवान कृष्ण के ये कहने का अर्थ है कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये किसी को भी और सभी को शुद्ध करता है। भगवान का दिव्य ज्ञान किसी को भी और सबको शुद्ध कर सकता है। तो किस प्रकार से कार्य करता है, ये ज्ञान कैसे कार्य करता है, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात इस संबंध में ये नहीं है कि इस समय हम कहाँ पे हैं, बल्कि हम किस दिशा में देख रहे हैं। तो अंतर क्या है, दोनों बातों में अंतर क्या है, आप स्टेटमेंट को समझिएगा। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि मैं कहाँ हूँ इस समय, बल्कि मैं किस दिशा को देख रहा हूँ। तो इसका अर्थ है गुणों के संबंध में, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और अंततोगत्वा दिव्य स्थिति। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे उस समय भी प्रायः बहुत सारे जो भारतीय थे वो सतोगुण का जीवन जिया करते थे। जो परंपरागत उनका जीवन था, पुण्य जीवन था, उसको जिया करते थे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के करीब थे, क्योंकि सतोगुणी जीवन वाला जीने वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण के समीप रहता है। सतोगुण भगवान कृष्ण के समीप रहता है तमोगुण की अपेक्षा में। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो उल्टी तरफ देख रहे, दूसरी तरफ देख रहे थे, वो पाश्चात्य जगत की तरफ देख रहे थे, और पाश्चात्य जगत के लोग पूरी तरह से तमोगुण में थे। तो आप अंतर समझ पा रहे हैं, भारतीय लोग सतोगुण में थे लेकिन वो पाश्चात्य जगत की तरफ देख रहे थे काफी लोग, लेकिन जो पाश्चात्य लोग थे, जो भी उसमें से थे, वो तमोगुण में थे लेकिन वो आध्यात्मिकता की खोज में थे। तो यदि हम भौतिकता की तरफ मुड़ रहे हैं, भोग लिप्सता की तरफ मुड़ रहे हैं, घर गृहस्थी की तरफ बढ़ रहे हैं, या इस जगत में सुख प्राप्त हो जाएगा, ये जिसका एक दिखावा किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, उस पर हम उससे अगर प्रभावित हो जाते हैं तो तो फिर हम उसी दिशा में जाएंगे और हम भगवान कृष्ण से दूर चले जाएंगे, भले इस समय हम सत्वगुण में क्यों ना हो। लेकिन हम श्रीला प्रभुपाद जी के शुरुआती शिष्य को देखते हैं तो वो लोग हिप्पी समाज में थे। जो हिप्पी लोग थे वो तमगुण में थे, वो हर प्रकार के चारों नियमों का, अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, तो इन चारों नियमों को तोड़ना ही उनका नित्य का नियम था। और उनको आध्यात्मिक जीवन की कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वो भौतिक इंद्र तृप्ति से असंतुष्ट थे। वो भले उसमें डूबे हुए थे लेकिन वो असंतुष्ट थे, और वो उच्चतर ज्ञान उच्चतर सुख की खोज में थे। एक्चुअली बचपन से ही वो लोग रजगुण के प्रभाव में, रजगुण जीवन में ही उनका कह सकते हैं अपब्रिंगिंग, यानी कि उनका जीवन यापन हुआ था, उनको बला पाला पोसा गया था, और इस रजगुणी जीवन को इन्हें कह सकते खिलाया गया था मुंह ठूस ठूस करके। और यही बात समाप्त नहीं होती है, रजगुण जीवन के साथ साथ वो ड्रग्स लेना, जैसे कहते हैं ना नशा करना की आदत भी पड़ गई थी। लेकिन एक अमेजिंग बात है कि वो नशा लेने से नीचे ना जाकर के ऊपर जा रहे थे। तो उसका अर्थ क्या है, वो शराब इत्यादि जो नशा कर रहे थे, नशा तो कर रहे थे लेकिन वो सोच रहे थे कि हम इससे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। यानी कि भले ही वो तमोगुण में थे लेकिन उनकी जो चित्त था या उनकी जो दृष्टि थी वो ऊपर की ओर थी, आध्यात्मिक प्रगति की ओर थी। और वो क्योंकि वो सोच रहे थे कि हाँ हम इस नशे के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति कर लेंगे, तो ये तमोगुण है, लेकिन इच्छा क्या थी, आध्यात्मिक प्रगति। और उस समय श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु अमेरिका में गए थे कृष्ण आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए। तो जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका गए और उन्हें कृष्ण भावना को प्रस्तुत किया, तो सभी हिप्पी जो काफ़ी हिप्पी लोग थे, ये लोग बहुत आकर्षित हुए और उन्हें उसको स्वीकार किया और बड़ी तीव्रता से कृष्ण भावना में प्रगति करी, और इस समय वो महान भक्त हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान में स्थित होना चाहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना पापी रहा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी चेतना का विकास कर सकता है। और हम जानते हैं व्यक्ति को जो एक साल पहले 15 किलोमीटर दूर जाकर के शराब पीते थे, मांस खाते थे, और अब 64 माला कर रहे हैं, और अब कोई पैसा भी देगा तो भी शराब पीने के लिए राजी नहीं है, भगवान की कथा करते हैं, 64 माला रोज करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा कितना परिवर्तन होता है, और इस बात का प्रमाण तो अनेक अनेक भक्त लोग दे सकते हैं। तो ये एक श्लोक एक प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न करता है कि सिद्धांत तो ये है कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को स्वीकार करता है वो उसका उद्धार हो सकता है, वो ऊपर उठ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति पापी है वो व्यक्ति ज्ञानी क्यों होगा, ज्ञानी कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये तो ये भी सिद्धांत है कि जो पापी लोग हैं वो ज्ञानी, वो दिव्य ज्ञान को धारण नहीं कर पाते। जैसे हमने सुना है कि भगवान बोलते नमाम दुष्कृतिर्न मूढ़ा, जो दुष्कृतिवान है वो भगवान के पास नहीं आते। तो समझना चाहिए, सामान्यतः ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वो पापी नहीं होता है, और जो पापी होता है वो ज्ञानवान नहीं होता, ये सत्य बात है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं पापी नहीं बल्कि पापियों में भी सर्वश्रेष्ठ पापी। तो ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान की नाव पे कैसे सवार होगा? तो आचार्य गण इसको समझाते हैं कि ये एक्चुअली अलंकार पूर्ण भाषा है भगवान की। ऐसा नहीं है कि पापी लोग ज्ञानवान होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ज्ञानवान लोग पापी हो जाते हैं, लेकिन ये अलंकार युक्त भाषा है ये दिखाने के लिए कि ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी भी क्यों ना हो उसका उद्धार हो सकता है, वो प्रगति कर सकता है, अगर वो चूज करता है, अगर वो चुनाव करता है इस ज्ञान को समझने का प्रयास करने के लिए और इस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए। तो प्रैक्टिकल दृष्टि से अगर आप देखें तो ये अलंकारिक भाषा लगती है, लेकिन ये वास्तविकता भी हो जाती है जब एक आध्यात्मिक गुरु की कृपा हो। जैसे हम देख सकते हैं नारद मुनि ने मृगारी को देखा था जो कि जो जानवरों को आधा मार करके छोड़ देता था, तो नारद मुनि उसके आगे के बुरे भविष्य को देख रहे थे तो उनके हृदय में करुणा हो गई, इसका कितना बुरा का होगा, मैं इसका उद्धार करता हूँ। तो एक आध्यात्मिक गुरु की कृपा, अहेतु की कृपा से उस जीवात्मा के हृदय में भी इच्छा आ सकती है दिव्य ज्ञान को धारण करने के लिए, भले ही उस समय वो बहुत पापी रहा हो। और देखिए तुरंत ही जो मृगारी था उसने अपने सारे पाप कर्म त्याग दिए। ऐसे ही श्रील हरिदास ठाकुर जी ने वेश्या का उद्धार कर दिया था। ये सब कथाएं मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा। लेकिन ऐसे ही नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को उद्धार किया था जब दस्यु रत्नाकर थे। तो हम देखते हैं कि एक भक्त की कृपा से एक पापी व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार करने की इच्छा को प्राप्त कर सकता है, कृपा से, अपनी योग्यता से नहीं कह सकते। तो एक जो बद्धात्मा है वो कितना भी पापी हो, अगर वो कृष्ण भावना के तरीके के प्रति आकृष्ट हो जाता है, कृष्ण भावना का ये जो प्रोसेस है, तो वो भी भगवान के भक्ति कृपा की वजह से, जैसे कि हमने देखा मृगारी के केस में और उस वेश्या के केस में, तो निश्चित रूप से फिर उसका भी उद्धार हो जाएगा। इस बात को श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, किराट हुलंद पुलंद पलकशा यवीर यवना कसादया ये ने च पापा दपाश्रयाश्रय तस्मत् शुद्धंत तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर भगवान के भक्त का आश्रय लेता है तो वो भी शुद्धंति शुद्ध हो जाता है। तो अगर हम कर्मयोग और ज्ञान और कर्मयोग के द्वारा जो अर्जित ज्ञान है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो अलंकारित भाषा है ये, लेकिन अगर भक्ति की तरफ से देखेंगे तो ये सत्य बात है कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति बड़ी जल्दी प्रगति कर लेता है। और ये दिव्य ज्ञान के, और आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी इस बात को ही समझा रहे हैं कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ ले व्यक्ति, अपने को समझ ले कि वो कृष्ण का दास है और उसके अनुसार कार्य करने लग जाए तो वो तर जाएगा। तो यहाँ पे ये दिव्य ज्ञान रूपी जो नाव है इसका गुणगान, इसका महिमा वंदन यहाँ पे हो रहा है। भगवान कृष्ण यहाँ पे दिव्य ज्ञान शब्द है, जो क्षमा कीजिएगा, भगवान कृष्ण यहाँ पे जो नाव है इसका उपयोग दिव्य ज्ञान के लिए कर रहे हैं। वैसे इस नाव को अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह पे से इंगित किया गया है, जैसे कि हमारा मानव शरीर जो है उसको भी नाव से बताया गया है और भगवान कृष्ण के चरणों को भी नाव बताया गया है। तत्पात पोते न महत कृते न, पोत मतलब होता है नाव, त्वत्पाद पोते न आपके चरणों चरण रूपी पोत का आश्रय लेते हैं, महत कृते न महान आचार्य लोग शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र में है कि जो मनुष्य शरीर है और भगवान कृष्ण का जो चरण कमल है ये भी नाव की तरह है। लेकिन ये सारी बातें सत्य हैं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि जो भी नाव से हम कंपेयर कर रहे हैं, नाव को जब भी शब्द यूज किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य है कि नाव का उद्देश्य होता है समुद्र के पार ले जाने के लिए। और मनुष्य जीवन अपने आप में नाव, ऐसी नाव नहीं है जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। केवल ऐसे तो सभी लोग मनुष्य हैं, तो सारे लोग मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर ले रहे। इसका अर्थ समझना चाहिए कि मनुष्य रूपी, मनुष्य शरीर रूपी हम नाव में बैठे हैं, लेकिन वो नाव सही दिशा में जाना चाहिए और वो सही दिशा तब जाती है जब व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस बात को श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मनुष्य शरीर रूपी नाम इसको मिला है, उसको शास्त्र की जो हवाएं हैं, फेवरेबल विंड्स, शास्त्र की जो हम ज्ञान सुनते हैं तब हमको मालूम चलता है कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, फिर हमारी जो नाव है वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके भगवान के धाम की तरफ उस पार पहुंच पाएगी। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में ये नाव अलग अलग रूप से का अर्थ होता है। ये मनुष्य शरीर को भी बोल सकते हैं और दिव्य ज्ञान को भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि इस नाव के द्वारा हमको जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है, जो सागर है, उसको पार करना है। तो पहली बात तो ये है, पहले स्तर पे तो हमको ये मनुष्य शरीर चाहिए। कुत्ते के शरीर में तो दिव्य ज्ञान दिया नहीं जा सकता ताकि हम आध्यात्मिक जीवन ज्ञान को समझ सकें, लेकिन उसके बाद हमको दिव्य ज्ञान समझना पड़ेगा, ये हमारा कर्तव्य है। और भगवान कृष्ण इस बारे में बता रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस परपट में कि कोई व्यक्ति अगर समुद्र में गिरा हुआ है तो वो कितनी देर के लिए तैर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाव पे आ जाता है और यह कह सकते हैं कि व्यक्ति उसको हाथ पकड़ के उठा करके नाव पे डाल देता है तो व्यक्ति बड़ी आसानी से समुद्र को पार कर सकता है। सो ये जो कृष्ण भावनामृत संघ है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जिन्होंने शुरू किया था, श्रील प्रभुपाद जी इसको हम सभी को एक नाव के रूप में है जिसे प्रभुपाद जी ने हमारे सामने हमारे जीवन में ला के दिया है। हम सभी लोग इस कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके या इन कृष्ण भावनामृत के दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठ सकते हैं और कृष्ण की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमें ये करना है, पहली बात तो ये करना है कि इस नाव पे आना है, और दूसरा ये करना है कि नाव से कूदना नहीं है, भले ही कोई थोड़ी बहुत तकलीफ हो, हो सकता है थोड़ा झगड़ा वगैरह हो जाए भक्तों से या और सारी परेशानियां हो जाए जो कि आएंगी। देखिए जब हम समुद्र में रहते हैं तो नाव में रहना समुद्र के अंदर रहने से श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी भक्त ने या किसी व्यक्ति ने उस नाव पे जो बैठे हुए हैं लोग उन्होंने झापड़ मार दिया हमको, तो क्या हम समुद्र में कूद जाएंगे? तो इसलिए बात ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों का जो संघ है उसमें ही हम दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो भले ही हमें भक्तों के संघ में कभी कभी कुछ तकलीफ हो जाए, फिर भी भक्तों के संघ में ही रहना चाहिए। आध्यात्मिक संघ त्याग देना तो लिटरली समझिए कि समुद्र में कूद जाने के बराबर है। तो भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करना और उनके संग में नियमित रूप से कृष्ण भावना का अनुशीलन करना ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है, बिल्कुल श्योर शॉट तरीका है भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए। इस बात को चैतन्य महाप्रभु से बोला था कि वैष्णव कौन है, उसका आचरण क्या होना चाहिए, तो महाप्रभु ने ही बताया असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। जब हम लोग भक्तों का संग अभक्तों का संग नहीं करते हैं और भगवान के भक्तों का संग करते हैं, यही वैष्णव का आचरण है, इसके द्वारा हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण यही बात यहाँ श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये नाव है ये किसी को मुक्त कर सकती है। और देखिए भगवत कृपा से हम सभी को ये नाव मिली है, ये भगवत गीता के प्रवचन इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप सब लोग सीखें भगवत गीता के ज्ञान को और जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में लेके आए। और आपको आश्चर्य होगा, भले ही आप प्रचार ना करते हो, आपको लगेगा कि कोई इस नाव पे नहीं आना चाहता है, लेकिन एक बार आप प्रयास करने लगेंगे तो आप देखेंगे बहुत से लोग इस दिव्य ज्ञान से प्रभावित होते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण के नित्य दास हैं हम और हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके प्रति आकृष्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी आकृष्ट हैं। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ संबंध में कि जब व्यक्ति समुद्र में गिरा रहता है तो वो गिरा रहता है, जब वो नाव में होता है तब भी वो समुद्र में होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं ये दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो जो भक्त यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वो भौतिक जगत में है, लेकिन वो एक्चुअली मुक्त अवस्था में है। यदि उनका जीवन कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण केंद्रित है, अगर वो अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हैं पूर्णतः पूर्ण रूप से। शिला रूप गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे भी वही बात यहाँ पे भी है, लेकिन अगर वो अपने मन वचन और कर्म से कृष्ण को समर्पित है तो वो मुक्त अवस्था में है। तो ये बहुत ही गहरी बात है जो कि इस भगवद्गीता के श्लोक के द्वारा हमें समझ में आना चाहिए। ये समझे व्यक्ति वह कृष्ण का नित्य अंश हूँ, भले उसका साक्षात्कार भी नहीं हो, गुरु के माध्यम से सुने और भगवान की भक्ति में लग जाए तो तुरंत मुक्त अवस्था में हो जाएगा, सारे पाप उसके धुल जाएंगे। हरे कृष्णा।